मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज 25 मई 2017 के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों मैं स्वागत करता हूं, विशेष रूप से अपने उन चार नौजवान दोस्तों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं राहुल कुमार, आप दानापुर पटना बिहार से हैं, आकाश कुमार आप नालंदा बिहार से हैं, श्वेता राज आप चंपारण बिहार से हैं और सुजीत मौर्य आप आजमगढ़ से हैं। तो मित्रों आप चारों साथियों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर। मैं आज के न्यूज एनालिसिस में मित्र दो पॉइंट पर विशेष रूप से आपसे बातें करूंगा। पहला तो मैं कैबिनेट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि ये कैबिनेट क्या चीज होती है, किस तरीके से काम करती है, इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कैबिनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, यहां तक कि इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए कैबिनेट की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस पर बात करूंगा और फिर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा ढोला सदिया सेतु के ऊपर जो डीडी न्यूज में एक एड के तहत दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं इन दोनों बिंदुओं पर आऊं, मैं दो तीन बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जो न्यूज से ही रिलेटेड हैं। पहला तो आपने सुना कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल जो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी से थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एक बहुत ही सिंपल सी सूचना है, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध काफी करीब के होते हैं। कुछ समय पहले दहल साहब भारत की यात्रा पर आए भी थे, उनका नाम आपके दिमाग में होगा, तो बस आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, है ना, ताकि एक अपडेट करने की बात है। और चूंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बहुत महत्वपूर्ण देश है, तो वैसे भी मालूम होना चाहिए। दूसरी खबर फ्रेंड्स कि आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के 3 साल पूरे हो गए हैं, मतलब नई सरकार जो अभी है सत्ता में उसके 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल का वक्त कंपैरेटिवली ठीक ठाक वक्त होता है और देख रहे हैं कि 3 साल के पूरे होने पर लगातार हर हमारे मंत्रालय के मंत्री अपने एक रिपोर्ट कार्ड आप कह लीजिए दे रहे हैं कि उनके मंत्रालय ने क्या क्या काम किया है, या यूं कह लीजिए कि 3 वर्ष में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, वो एक तरीके से रिव्यू हो रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी निगाह में रखें, अखबारों में कहीं आता है तो थोड़ी सी चीजें पढ़ें और अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलता है तो उसे नोट जरूर कर लें। आप हो सकता है कि आपको डेटा पर उतना भरोसा ना हो कि भैया ये तो सरकार का डेटा है, लेकिन आपको भरोसा करना चाहिए। सरकार भी डेटा देती है इस तरह के, तो आधिकारिक डेटा है वो, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया डेटा है, उसकी अपनी एक ऑथेंटिसिटी है। आप उसकी समीक्षा कीजिए अपनी तरफ से, लेकिन उस डेटा पर आप डाउट मत कीजिए, राइट। और अगर उसके समानांतर कोई दूसरी एजेंसी डेटा देती है जो प्राइवेट एजेंसी है या एनजीओ है, तो बिल्कुल आप उन्होंने उससे भी कोट कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दो मतलब सोचने की बात नहीं है, लेकिन सरकारी डेटा की उपेक्षा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अक्टूबर में आपको मेंस एग्जामिनेशन आप जब आएंगे और देखेंगे, आप हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को बैठने का अवसर भी मिले, तो पाएंगे कि ये जो 3 वर्ष की उपलब्धियां हैं इसकी जानकारी आपको कई प्रश्नों के उत्तर में शामिल करने में मदद करेगी, आपको उत्तर लिखने में भी पूरी तरह से मदद कर सकती है। तो मित्रों इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। एक खबर है मित्रों, अभी यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, आपको मालूम है कि पहले सऊदी अरब गए, फिर फिलिस्तीनी और इसराइल और फिलिस्तीन भी गए हुए हैं। वहां एक नया डेवलपमेंट अभी जो हुआ है वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के, आप कह लीजिए कि अगेंस्ट, कुछ ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो पाकिस्तान के लिए थोड़े से निगेटिव हैं लेकिन भारत के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। पहली बात तो उन्होंने सीधे सीधे यही कही कि नहीं, भारत जो है वो आतंकवाद से परेशान तो है, और बट नेचुरली की परेशानी की जो जड़ है वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में भी जो संकट है उसके जड़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, और यही कारण है कि उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि पाकिस्तान को जो ऐड दिया गया है इससे पहले जो सहायता दी गई है वो उसे कर्ज में तब्दील कर दिया जाएगा, और कुछ ऐसा प्रस्ताव लेकर के भी उन्होंने रखा भी है राष्ट्रपति ने, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत चौंकाने वाली बात है, मतलब सतर्क हो जाने वाली बात है। फिर आप दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि धीरे 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 पाकिस्तान विश्व मंच पर भी ढीला पड़ रहा है, मतलब उसकी जो इमेज है कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने, कैंप का प्रशिक्षण देने, इस तरह की इमेज बन रही है। और खासकर अभी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने जो कुलभूषण जाधव का जो मामला पेश किया है उससे तो पाकिस्तान की इमेज को काफी काफी झटका लगा है, काफी धक्का लगा है। यानी कि धीरे धीरे पाकिस्तान का जो मोराल है आप कह लीजिए वो डाउन हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय इमेज भी उसकी खराब हो रही है। ये भारत के बहुत पक्ष में है, भारत के बहुत ही जबरदस्त पक्ष में है, क्योंकि मित्रों इधर का पूरा साउथ ईस्ट एशिया महाद्वीप ही कह लीजिए एज ए होल, आप अगर शक्ति संतुलन की दृष्टि से देखेंगे तो धीरे धीरे चीजें बड़ी असंतुलित होती जा रही हैं। खासकर चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो एक दोस्ती का जबरदस्त गठजोड़ तैयार हो रहा है उसको लेकर के भारत भी निश्चित रूप से चिंतित है, क्योंकि मजहूर चीन सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य है और पाकिस्तान के कई गलत चीजों को जो भारत प्रस्ताव लेकर के आया था आपको मालूम होगा उसको चीन ने वीटो कर दिया और पाकिस्तान को संरक्षित कर लिया, बचा लिया। तो एक बहुत बड़ी शक्ति का हाथ चाइना जिसे आप कहेंगे पाकिस्तान के पीठ पर है, तो ये भारत के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। लेकिन भारत भी बहुत अच्छे कूटनीतिक तरीके से, राजनयिक तरीके से, धैर्य के साथ इन सारी स्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ रहा है, और उसके नतीजे अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगे हैं, और वो नतीजा इसी रूप में है कि किस तरह से अब पाकिस्तान विश्व मंच पर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। और एक बात और भी है फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि आतंकवाद से पूरी दुनिया कैसे त्रस्त है। अभी मैनचेस्टर एरिना में जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरी दुनिया में एक बहुत ही जबरदस्त आक्रोश है। तो ये मान करके चलिए कि अगर किसी भी देश का नाम आतंकवादी देश के रूप में आता है या जरा भी ये पता लगता है कि आतंकवादियों के प्रति यह देश सहानुभूति रखता है तो अब वो विश्व आक्रोश का शिकार होने से अपने को बचा नहीं सकेगा, और पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर फ्रेंड्स, एक है कैबिनेट डिसीजन और दूसरा है ढोला सदिया सेतु। तो पहले मैं बात कर लूं ढोला सदिया सेतु पर, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, फिर हम कैबिनेट पर बात करेंगे क्योंकि कैबिनेट एक ऐसा विषय है जिस पर कितनी भी देर तक बात की जा सकती है। मित्रों दो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी, एक छोटा सा नोट आपके पास होना चाहिए ढोला सदिया सेतु को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंस से जुड़ा हुआ है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, और जो सुरक्षा है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के एग्जामिनेशन का है और हर साल दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। मैं यहां थोड़ा सा ये भी बता दूं मित्रों कि जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो तीन चार तरह की सुरक्षा आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है जिसमें हम नक्सलाइट जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो भी हमारी सुरक्षा के को एक थ्रेट देते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल सिक्योरिटी है जो आतंकवाद जैसी घटनाएं जो हो रही हैं ये हमारी बाहरी सुरक्षा हो जाती है। तीसरी अब एक साइबर सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, साइबर सिक्योरिटी। तो जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो ये तीन चार तरह की सुरक्षाएं हमारे दिमाग में होनी चाहिए, व्यापक रूप से इसे आपको देखना है। तो दोस्तों ये जो ढोला सदिया ये दो स्थान हैं, दोनों असम में हैं, ये ढोला से सदिया को जोड़ने वाला पुल ब्रिज है जो ढोला से सदिया को जोड़ता है, इन दोनों के बीच बनाया गया ब्रिज जो 9.15 किलोमीटर है, 9.25 किलोमीटर, और इसके बन जाने के बाद अब यह ढोला सदिया ब्रिज हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज बन गया। कल्पना करके देखिए कि 9.15 किलोमीटर बहुत लंबा ब्रिज है। इसकी देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इस सामान्य रूप में तो यही है कि ये रोड लिंक प्रोवाइड कराता है किसके बीच में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ये आपको दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से रखना होगा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है अब यहां आपको जानना है और इसी से फिर आपको नेशनल सिक्योरिटी को जोड़कर देखना है। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर के हमेशा चीन कुछ न कुछ बखेड़े खड़ा करता रहता है। अभी हमारे दलाई लामा जी जब अरुणाचल प्रदेश गए थे तो उसी पर आपत्ति कर दी थी चीन ने कि भैया भारत के मंत्री उनके साथ क्यों है। उसको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थान जो है उसकी सीमा से लगे हुए वो उसका हिस्सा है और ये डिस्प्यूटेड है। चलिए वो तो चलता रहेगा। अरुणाचल प्रदेश से जो लगा हुआ जो चाइना की जो का जो बॉर्डर एरिया है फ्रेंड्स लगभग 3,500 किलोमीटर एग्जैक्ट 3,488 किलोमीटर है। तो याद रखने के लिए आप 3,500 किलोमीटर याद रख सकते हैं। 3,500 किलोमीटर हमारी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन उस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उससे भी बड़ा कि उस पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई वैसा साधन नहीं है। एयरपोर्ट नहीं है, आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है, वहां की टाइपोग्राफी इस तरह की, भौगोलिक स्थितियां इस तरह की हैं कि एयरपोर्ट की संभावना नहीं है। हाँ, हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह जरूर है। तो अब जो हमारी आर्मी है उसको कैसे जाना पड़ता, आर्म फोर्स को? तो दोस्तों असम में एक जगह तेजपुर, आपने नाम सुना होगा, कभी कभी न्यूज में यह स्थान का नाम आता भी है तेजपुर। उनको तेजपुर से होकर अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ता है और फिर अरुणाचल प्रदेश के दो स्थान है दिबांग और अंजाव, वहां तक पहुंचने में उनको 2 दिन लग जाते हैं। अब सोच करके देखिए कि हमारी आर्मी को वहां तक पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं असम से चल करके, और वो हमारा बॉर्डर एरिया है, इतना लंबा बॉर्डर एरिया है 3,500 किलोमीटर और चाइना के साथ है, डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड हम नहीं मानते, चाइना मानता है, भारत तो मानता ही नहीं और है भी नहीं, लेकिन चलिए अब वो मान रहे हैं तो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो 9.5 किलोमीटर मोटे तौर पर कह लीजिए जो ब्रिज बना है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो हमारे यहां का है दोस्तों। और उधर अगर आप दूसरी तरफ देखें चाइना, तो चाइना तो लगातार उसके किनारे अपना सड़कें बनाने में और क्या क्या प्रोजेक्ट करने में वो लगा हुआ है, वो अपने काम में कोई ढिलाई नहीं दे रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफी आगे है। वन बेल्ट वन रोड आप देख ही रहे कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना तैयार कर रहा है। तो मित्रों ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है प्री एग्जाम के लिहाज से भी और मेंस के भी, आप देख लीजिएगा और अच्छा होगा कि आप इस पर छोटा सा एक नोट तैयार कर लें। दोस्तों अब मैं आता हूं कैबिनेट पर। देखिए फ्रेंड जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो हिंदी में इसका शब्द है मंत्रिमंडल, एक शब्द आपको और सुनने को मिलेगा मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स है दे ऑल आर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही सदस्य होते हैं लेकिन सभी सदस्य नहीं होते। ये जो कैबिनेट है, अभी बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है और आपने न्यूज में सुना कि कैबिनेट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं। कैबिनेट अगर डिसीजन ले रही है तो इसका मतलब है कि वह सरकार डिसीजन ले रही है। इनफैक्ट कैबिनेट इज अ गवर्नमेंट, नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी एग्जीक्यूटिव है, नो डाउट, वो कार्यपालिका है, लेकिन जो निर्णय लेने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति होती है डेमोक्रेसी में वो कैबिनेट होती है। आपने देखा कि कैबिनेट ने एक तो सबसे बड़ा जो निर्णय लिया है ये आपको मालूम होना चाहिए, वो ये है कि अब हमारी जो देशी कंपनियां हैं और विदेशी कंपनियां ये दोनों मिलकर डिफेंस का सामान तैयार करेंगे, जिसमें हेलीकॉप्टर भी होंगे, टैंक भी होंगे, इस तरह का प्रोडक्शन करेंगी और वह प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा, मेक इन इंडिया है वो, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर हमारा स्वदेशी उत्पादन होता है तो सबसे बड़ी चीज तो वो जो होती है वो एम्प्लॉयमेंट होती है, रोजगार होता है, तकनीकी है ही और दूसरी चीजें उससे जो जुड़ी हुई हैं वो तो है ही, सबसे बड़ा पॉइंट होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो ये मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको मालूम है कि हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। एक और डिसीजन लिया गया है कि जो गन्ने का मूल्य है 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है, न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। खैर मित्रों जो कैबिनेट बनती है इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए कि आपने मंत्रियों के जब रैंक सुने होंगे या जब चर्चा होती है तो कहते हैं कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है। कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है कहने का मतलब ही यह हुआ कि वो जो मिनिस्टर है वो कैबिनेट का मेंबर है, कैबिनेट रैंक का मतलब हुआ। इसके बाद दूसरा रैंक आप सुनते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री, वो राज्य का मंत्री नहीं है, है ना, वो राज्य स्तर का मंत्री है, वो उनका लेवल है, रैंक है। अभी जो राज्य स्तर का मंत्री है ये कैबिनेट का मेंबर नहीं होगा, याद रखिए ये कैबिनेट का मेंबर नहीं होगा। बेसिकली जो राज्य स्तर के मंत्री होते हैं फ्रेंड्स, वो दो तरह के होते हैं, याद रखिए दो तरह के। पहले तरह में होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, जैसे हमारे वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, तो उनके अंडर में और भी मंत्री हैं जो राज्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री वो भी हैं लेकिन वो राज्य स्तर के हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में वो काम कर रहे हैं। पहला प्रकार तो राज्य मंत्री का यह हुआ। दूसरा प्रकार राज्य मंत्री का यह होता है फ्रेंड्स कि स्तर तो उनका राज्य मंत्री का ही है लेकिन उनको एक मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया है, पूरी तरह से वो उस मंत्रालय को देख रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो बहुत से छोटे छोटे मंत्रालय हैं ना, वहां बहुत चैलेंजिंग वर्क नहीं है, थोड़ा काम है तो वो राज्य स्तर के मंत्री को सौंप देते हैं, क्योंकि कैबिनेट स्तर के मंत्री को सौंपने का मतलब है जब आप स्तर बढ़ा देते हैं तो उनकी सुविधाएं, उनके उनकी सैलरी, पर्स, सब कुछ फिर उनको उसी रैंक के आधार पर दिया जाएगा, तो क्या जरूरत है वो सब देने की, तो राज्य स्तर के मंत्री को इंडिपेंडेंट चार्ज बना दे दिया जाता है। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम कैबिनेट की अब बात करेंगे तो देखिए अब कैबिनेट में कौन कौन हुए। प्रधानमंत्री तो सर्वे सर्वा ही है, वो कैबिनेट के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो इसके मेंबर होते ही हैं, प्लस वे राज्य मंत्री, इस वाक्य को ध्यान से सुनिएगा, वे राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र प्रभार है, इंडिपेंडेंट चार्ज उसको कहा जाता है हिंदी में, स्वतंत्र प्रभार, उन स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को भी अगर उनके मंत्रालय का कोई मामला है तो कैबिनेट के बैठक में बुलाया जाता है। क्योंकि अगर हम राज्य मंत्री को कैबिनेट की बैठक में नहीं बुलाएंगे तो फिर सवाल यह कि सरकार में उस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उस मंत्रालय के बारे में जानकारी कैबिनेट को कौन देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वतंत्र राज्य मंत्री को बुलाना पड़े, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को बुलाना पड़ता है ताकि संपूर्णता आ सके, उसमें कंप्लीटनेस आ सके। यह होता है मित्रों मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर। तो मित्रों कभी इस पर आगे चलकर और हम बात करेंगे, इसकी ताकत के ऊपर, इसके वर्किंग पैटर्न के ऊपर। आप कैबिनेट सेक्रेटरी का भी नाम सुनते हैं तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है, कैबिनेट सचिवालय का नाम सुनते हैं कैबिनेट सचिवालय क्या है। आप देखेंगे कि कैबिनेट कैबिनेट का आपको लगातार सुनने को मिलता रहेगा। मान करके चलिए अभी फिलहाल तो इतना ही कि कैबिनेट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज कैबिनेट, यही सर्वे सर्वा है। तो मित्रों कैबिनेट के बारे में आज बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है दोस्तों, अब वक्त नहीं है, आपके सामने कुछ क्लिपिंग्स हैं, इन्हें आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। अब मैं आता हूं सीधे ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, प्रकाश तिवारी गोपालगंज बिहार से, नलिनी त्यागी, मालती यादव और ओम मोहबिया, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।